सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंद वर्णे मि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस परुवणम उच्छम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं को कथन करने का लक्ष्य बनाकर आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठसार जीवकांड की रचना की है। मुख्य नाम है इसका जीवकांड। गोमठसार ये चामुंड राय महामात्य के नाम पर रखा गया। उनका दूसरा नाम गोमठ था और उन्होंने अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान बाहुबली की 57 फुट उत्तुंग प्रतिमा बनाई श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। तब उन भगवान को लोग गोमटेश्वर कहने लगे, यानी गोमट राजा के द्वारा बनाई गई मूर्ति गोमटेश्वर कहलाई। और उन गोमट शिष्य को लक्ष्य करके, यानी उनके प्रश्नों के आधार पर आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने जीव कांड और कर्म कांड इन दो ग्रंथों की रचना की और उन दोनों ग्रंथों के साथ नाम जोड़ा गोमठसार जीव कांड और गोमठसार कर्म कांड। आप गोमठसार जीव कांड ग्रंथ का ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं, लगभग 750 गाथाओं में से सरल गाथाओं का संकलन करके पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने कुल 173 गाथाओं में इस गोमठसार जीव कांड सार को हमें उपलब्ध कराया है। उसी का स्वाध्याय कराकर आप लोगों का ज्ञान वृद्धिंगत किया जा रहा है। हम इस समय 8वें चैप्टर में अर्थात 8वीं प्ररूपणा में चल रहे हैं, काय मार्गना की ओर मैं आ रही हूँ। काय मार्गना पर उससे पहले एक दो प्रश्न आपसे किया जाना है, क्योंकि 28 फरवरी को आपकी परीक्षा भी होनी है 87 नंबर गाथा तक। तो 26 गाथा तक आपने एक प्ररूपणा जो गुणस्थान प्ररूपणा है उसकी परीक्षा दी है और 27वें नंबर की गाथा से जीव समास प्ररूपणा पर्याप्ति प्राण संज्ञा इन प्ररूपणाओं की ओर चले हैं। उनमें से ही अब आपकी तैयारी के लिए थोड़े से कुछ प्रश्न करती हूँ। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा और जिनको उत्तर आता है हैंड रेज करेंगे, पुनः कोई एक लोग उत्तर बताएंगे और सही उत्तर होगा सब लोग उसे स्वीकार करेंगे। चलिएगा, सर्वप्रथम जीव समास कितने होते हैं, जीव समास के भेदों की संख्या बताना है। जीव समास कितने होते हैं, हैंड रेज जो लोग कर रहे हैं उनमें से स्पॉटलाइट करना है। बहन जी स्पॉटलाइट करो और उन्हें अनम्यूट भी करें। गोमठसार जीव कांड के अनुसार पूछा जा रहा है आपसे कि जीव समास कितने हैं। चलो किसी को अनम्यूट करो, हैं सहला दगड़े जी, हाँ बताइए। जीव समास 14 होते हैं, क्या आप बताएंगी कि कौन कौन से होते हैं या दूसरे से करें उसका बताइए। बहुत ही सुंदर उत्तर बताया है शैला जी ने। सब लोग उपस्थित सभी लोग झूम के तालियां बजा करके शैला जी के उत्तर की अनुमोदना करेंगे, सराहना करेंगे। पूरे 14 संख्या बताई और उनके नाम, यानी एक इंद्रिय जीव के बादर और सूक्ष्म, ये दो भेद हैं। फिर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय, संगी असंगी, ये मिलकर के कुल सात हुए। पुनः इन सातों में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के भेद पाए जाते हैं। तो सात को दो से गुणा किया तो कितने हो गए, 14। इस प्रकार से जीव समास के 14 भेद हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न, योनि के कितने भेद होते हैं, योनि के कितने भेद होते हैं, हैंड रेज कीजिएगा जिनको उत्तर आता होगा। और आपको काफी दिन हो गए हैं इस इन विषयों को पढ़े हुए, लेकिन परीक्षा देने के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी भी करना है, इसलिए ये आपका आज टेस्ट हो रहा है, योनि के भेद। चलिए किसी को स्पॉटलाइट करें, अनम्यूट करें, कौन है ये नगर, ठीक है, है? बाराबंकी की हैं क्या, मिलन जैन, मिलन जैन, इनको अनम्यूट कीजिए अपने को, आवाज आपकी आएगी। मिलन जी, इनको स्पॉटलाइट कहाँ किया, योनि के कितने, सबसे पहले योनि के मूल में संक्षेप में कितने भेद हैं, देखिए ध्यान से, जल्दी मत करिए, और गाथा भी बताइए कि कौन सी गाथा के आधार से आप क्या बता रही हैं। हाँ मिलन जी बताइए,
चौरासी लाख योनि होते हैं माता।
अच्छा, तो 84 लाख योनि होती हैं, कौन कौन सी होती हैं बताइए। और कोई बताना चाहेंगे, जीव समास प्ररूपणा में आया है वर्णन, और गाथा नंबर 29 में जाएंगे, उसके अनुसार बताना है योनि के कितने भेद हैं। हाँ इनको स्पॉटलाइट किया, दीपिका जी बताइए, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही दीपिका जी। क्या बात, हाँ बताइए, अभी अनम्यूट नहीं हुआ, जो ऊपर माइक का निशान बना हुआ, हाँ बताइए, अब आ रही, कौन कौन से, गुण योनि और आकार योनि। चलिए ठीक है आपका उत्तर, लेकिन आपने जो है, सभी लोग खोलिएगा गाथा नंबर 29 और पेज नंबर 29-30, इसमें आपको बताया गया है संखावत्त जोनी, पहले तो दो योनि हैं, गुण योनि आकृति योनि आकार योनि के तीन भेद, संखावत्त जोनी कुमुण वंशपत्त जोनी या तथ्य संखावत्त नियमाधु विभज्यदे गभो। इस गाथा का अर्थ कौन बताएगा, इस गाथा का आपको अर्थ बताना है, जो लोग अच्छे से इसको बता सकें हैंड रेज करें। मैंने गाथा पढ़ दी है, गाथा नंबर 29, कोई नहीं हैंडरेज, कोई नहीं है तो बहुत देर लगाते हो। हाँ इनका क्या नाम है? आशा। आशा जी बताइए, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ आशीर्वाद। नहीं नहीं फिर से बताइए, आपकी आवाज पूरी नहीं आई थी, इसका अर्थ बताइए। जो गाथा हमने पढ़ी है इसका अर्थ पूरा बताइए। कौन सी योनि? अरे भाई कौन सी योनि, पूरा अर्थ नहीं बता पा रही आप। सुनिएगा आप, इस गाथा का अर्थ है, क्यों आवाज हमारी बंद करो ना, यहाँ की आवाज तो बंद करो, नहीं यहाँ की आवाज तो बंद करो। आकार योनि के तीन भेद हैं, शंखावर्त योनि, कूर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि। ये जो गाथा मैंने बोली है, पहले आप यूं समझ लें कि योनि के दो भेद हैं, गुण योनि और आकार योनि। आकार योनि के तीन भेद हैं, शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र। ये तीन योनियां हैं, इनमें से जो आप बता रही थी, शंखावर्त योनि में गर्भ नियम से वर्जित होता है। तो ये जो गाथा हमने बोली है 29 नंबर की गाथा, उसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि आकृति योनि के तीन भेद हैं, शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र, और शंखावर्त योनि में गर्भ नियम से नहीं रहता। ये योनि चक्रवर्ती की पटरानी की मानी गई है। चलिए अब आगे हम पुनः प्रश्न करेंगे। अभी हम आपको अब विषय पर ले चलते हैं कि काय मार्गणा के अंदर, काय मार्गणा में आप वनस्पति काय के स्वरूप पर चल रहे थे, उसमें पेज नंबर 74 है और गाथा नंबर 64। आपने जाना कि काय के दो भेद हैं, स्थावर काय और त्रस काय। स्थावर में पंच स्थावरों की बात को बताया गया, जिनमें जो पांचवा वनस्पति काय जीव का भेद है उसमें चल रहे हैं। गाथा नंबर 64 नंबर की गाथा है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की पहचान। गुड़ सिर संधि पवम
पवम
समभंग महिरुहम च छिन्नरुहम
समभंग महिरुहम च छिन्नरुहम
साहारणम शरीरम
साहारणम शरीरम
तव्विवरीयम च पतेयम
तव्विवरीयम च पतेयम।
सामूहिक गाथा पढ़िएगा। गुड़ सिर संधि पवम समभंग महिरुहम च छिन्नरुहम साहारणम शरीरम तव्विवरीयम च पतेयम। साधारण और प्रत्येक, ये वनस्पति के दो भेद बताए गए हैं। तो इस गाथा के अनुसार बताया, गुड़ सिरा संधि पर्वम समभंग महीरुकम च छिन्नरुहम साधारणम शरीरम तद विपरीतम च प्रत्येकम। जिनका शिरा यानी बाह्य स्नायु जो है, और संधि माने रेखाबंध, और पर्व यानी गांठ अप्रगट हो, और जिसका भंग करने पर समान भंग हो, और दोनों भंगों में परस्पर हिरुक अर्थात अंतर सूत्र, जो कोई चीज तोड़ते हैं ना तो सूत्र उसके एक दूसरे में लगा रहता है, फिर बाद में उसको रेशे जिसको कहते हैं अलग अलग कर देते हैं हम, अंतर्गत सूत्र तंतु ना लगा रहे तथा छेदन करने पर भी जिसकी पुनः वृद्धि हो जाए उसको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। और जो इनके विपरीत हैं अर्थात इन चिन्हों से रहित हैं वे सब अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कही गई हैं। देखो क्या है कि वनस्पति कायी जीवों का लक्षण ये है कि जिन्होंने वनस्पति नाम कर्म के उदय से एक केंद्रीय जीवों की वनस्पति पर्याय को प्राप्त किया है। उनमें अनेकानेक भेद होते हैं, जैसे कभी आपने ध्यान दिया हो, ककड़ी होती है, बहुत पतली सी ककड़ी है और वो अभी ठीक से बड़ी भी नहीं हुई है। छोटी छोटी सी ककड़ी को कोई कोई तोड़ लेते हैं, आप उसको तोड़िए तो एक साथ एक जैसा तुरंत टूटेगी और उसका रेशा जो है वह भी अलग अलग हो जाएगा तोड़ने के बाद। तो ये कहलाते हैं, ये फल जो है ये खाने के योग्य होने पर भी जब अच्छी तरह से पक जाते हैं या खाने के योग्य हो जाते हैं तब ही इनको तोड़ने का मार्ग बताया गया है, आज्ञा बताई गई है। लेकिन जो तुच्छ फल होते हैं, जैसे छोटी छोटी आमी लोग तोड़ लेते हैं जिनके अंदर अभी बीज भी नहीं पड़ा, तो इनके लिए बताया गया है कि इन चीज़ों में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों तरह के होते हैं। तो जिसका भंग करने पर समान भंग हो जाए, कभी आप देखें एक भिंडी तोड़ते हैं तो उसमें रेशा लगा हुआ होता है और बहुत छोटी सी है तो उसको नहीं तोड़ना चाहिए, समान भंग हो जाता है। जिसकी पुनः वृद्धि हो जाए, जो अपने योग्य जितनी उनको वृद्धि होनी है उतनी तक का वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी वनस्पति सप्रतिष्ठित वनस्पति प्रत्येक वनस्पति कहलाती हैं। दरअसल इनका और विशेष अर्थ आपको अन्य ग्रंथों में, और अभी मैंने पूज्य माता जी से बात की, एक सचित्ता चित्त निर्णय नाम की पुस्तक है, उसके अंदर बहुत सूक्ष्मता से वर्णन आया है। कुछ लोग क्या है, वनस्पति को टूटने के बाद भी सचेतन ही सारी वनस्पतियों को मानते हैं और उन चीज़ों को गर्म करके लेते हैं, कच्ची नहीं लेते। कोई भी फल है, जैसे सेब है या अनार के दाने हैं या फिर कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी फल है, तो उसको कच्चे में सचित्त मान लेते हैं और उसको गर्म करने के बाद उसको अचित्त मान लेते हैं। इसी तरह से जूस निकालने के बाद भी उसको गर्म करके पी लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी विधान आगम ग्रंथों में नहीं है। जो चीज़ पेड़ से टूट गई फिर वो अचित्त हो गई और उसको आपने छिन्न भिन्न कर लिया, क्योंकि प्रासुक करने के कई तरीके हैं, गरम करके भी प्रासुक होता है और छिन्न भिन्न करके यानी कि उसको चाकू से समार दिया गया, बना दिया गया, तो वो अप्रतिष्ठित हो जाती हैं और उनको खाने में फिर कोई दोष नहीं। अगर आप उनको छिन्न भिन्न करने के बाद भी दोषास्पद मानते हैं, इसका मतलब ये गरम करने के बाद वो जीव उसके अंदर मर गया, तो ऐसा कोई विधान नहीं है। लेकिन अपनी अपनी ये धारणा है वनस्पति के बारे में, कई प्रकार की कई धारणाएं लोग बना लेते हैं और फिर उसको अपने अपने अनुसार चलाते हैं। तो देखो ये अपनी अपनी मर्यादा है, लेकिन शास्त्र के अनुसार आपको ये मानना है कि जो वनस्पति यानी सब्जी हैं फल हैं उनको जब तुच्छ रूप में है, बहुत छोटे हैं, छोटी सी ककड़ी है, छोटा सा बिल्कुल आम है जिसके अंदर बीज भी नहीं पड़ा है, छोटी सी भिंडी है या फूल में है बिल्कुल कली है, तो उन चीज़ों को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वो तुच्छ अवस्था में रहते हैं। और जब वो अपनी पूरी पर्याय में आ जाते हैं तब उनको तोड़ने के बाद बस वो अप्रतिष्ठित हो जाते हैं। यद्यपि वनस्पति के जो दो भेद गिनाए हैं उनमें प्रत्येक से साधारण के भेद को भिन्न माना गया है। प्रत्येक वनस्पति जो है वह पेड़ों के अंदर, जैसे जिस वृक्ष का मालिक एक जीव है, जैसे हमने कल भी बताया था आपको, अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है, अनार का पेड़ है, जो भी हैं पेड़, तो चाहे सूखे भी फल हैं, चाहे बादाम हैं, चाहे काजू हैं, सबके पेड़ होते हैं, कच्चे अवस्था में वो कच्चे फल कहलाते हैं, वही सूख करके जैसे अन्न है जब तक खेत में लगे हुए हैं, गेहूं धान सब चीज़ें हरी रहती, सूखने के बाद जब वो कट जाती हैं आपके घरों में बिल्कुल तैयार माल आ जाता है, तो पूर्णतः वह अचेतन हो जाता है और उसको फिर ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। तो ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक की बात रहती है। और अब आप आगे साधारण जीवों का क्योंकि प्रत्येक और साधारण इन दो वनस्पतियों में अंतर है। साधारण वनस्पति पर आएंगे गाथा नंबर 65 और पेज नंबर 75 साहारण महारो
साहारण महारो
साहारण मान पान गहनम च
साहारण मान पान गहनम च
साहारण जीवाणम
साहारण जीवाणम
साहारण लक्षणम बणियम
साहारण लक्षणम बणियम।
सामूहिक गाथा पढ़िए। साहारण महारो
साहारण मान पान गहनम च साहारण जीवाणम
साहारण लक्षणम वणियम। साधारण महारः साधारण मान पान ग्रहणम च साधारण जीवाणम जीवानाम साधारण लक्षणम वणितम। अब साधारण में आइए। प्रत्येक और साधारण ये केवल एक इंद्रिय जीव में ही मतलब वनस्पति में ही होते हैं। एक है वो एक इंद्रिय है। तब साधारण ही जिन जीवों का साधारण ही आहार है, साधारण ही जन्म है और साधारण ही माने एक साथ ही जिनका श्वासोच्छ्वास चलता है, श्वासोच्छ्वास जो एक साथ ही ग्रहण करते हैं, इन साधारण जीवों का साधारण अर्थात साधारण ही समान ही तो आहार है। साधारण माने समान ही अर्थात एक साथ ही सब लोग श्वासोच्छ्वास ग्रहण करते हैं एक साथ। जैसे काई है, आपने कहीं नाली के पास काई देखी और उसको एकदम रगड़ के साफ कर दिया, तो ये काई के अंदर साधारण जीव माने जाते हैं और वो उनका एक साथ श्वासोच्छ्वास अपने को कुछ नहीं दिखेगा, अपने को लगेगा ये सब अचेतन है, लेकिन वे बराबर श्वासोच्छ्वास ग्रहण करते हैं। किसी नदी के अंदर, नहर के अंदर, तालाब के अंदर शैवाल देखते हैं आप, जो ऊपर से थोड़ा सा काई सी उसके ऊपर रहती है तो उसको शैवाल बोलते हैं। वह एक तरह से पानी का कीचड़ है। उसमें भी जो जीव हैं उनका एक साथ श्वासोच्छ्वास और एक ही समान रूप से उनका आहार होता है। तो साथ ही उत्पन्न होने वाले जिन अनंतानंत साधारण जीवों की आहार आदि पर्याप्ति और उनके कार्य सदृश अर्थात समान काल में होते हैं उनको साधारण जीव कहते हैं। इसकी व्याख्या और आगे की जाएगी। यानी इन जीवों की हिंसा से अपने को बचना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन स्वच्छता रखें, एक साथ गंदगी ना होने दें ताकि आप हिंसा के पाप से बच सकें। यही वनस्पति काय के जीवों को और काय मार्गणा काय प्ररूपणा को कहने का यही सार समझना आज के स्वाध्याय का यही सार है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतो दो हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।